समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। ये पंक्तियां हैं बाबा नागार्जुन की। जी हाँ, आज हम बाल दिवस मना रहे हैं। बाल दिवस हमें अपने उस बचपन में ले जाता है जब हमारे होठों पर दंतुरित मुस्कानें हुआ करती थी। दुनियादारी की समझ भले ना थी लेकिन अपनी एक अलग ही दुनिया थी। स्कूल में टीचर्स और खेल के मैदान में दोस्तों का साथ, हर छोटी बात पर हम खुश हो जाते थे और मुश्किलें तो हम समझते ही नहीं थे। कितना कुछ था बचपन में। आइए आज हम उस बचपन को सजोते हैं और कुछ खट्टी मीठी यादों की गठरी लिए अपने बचपन को सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ ही सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर नई सुबह नई आशाओं के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं आज सवेरे का नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के समाचार होंगे, महानगरों की खबरें होंगी, खेलों की मैदान की हलचल भी होगी, जानेंगे मौसम का हाल, इतिहास के पन्नों पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे आज के दिन क्या विशेष है। और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जयंती या जन्मदिन। आज सवेरे की इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट नीना मैथ्यू। नमस्कार नीना।
नमस्कार आकर्षिता, एंड गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 MHz एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, wherein ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 14th ऑफ नवम्बर। सो लेट अस बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट। In Jharkhand, over 66% polling was recorded in the first phase of assembly elections yesterday. As per the Election Commission, the highest over 76% voting was recorded from Karsavan. 43 constituencies spread across 15 districts went to the polls in this phase. The poll body said the voting percentage is likely to increase further. After completion of the first phase of assembly elections in Jharkhand, campaigning has intensified for the second phase of polling, which will be held on 20th of this month. Leaders of both NDA and India Bloc are scheduled to address a series of meetings in their respective areas. Senior BJP leader and Home Minister Amit Shah will address three election meetings at Giridih, Gandeh and Bokaro, while UP Chief Minister Yogi Adityanath is scheduled to hold election rallies at Dhanbad, Bokaro and Bermo. Senior JMM leader and Chief Minister Hemant will address election meetings at Deogarh, Dumka and Bokaro. Leaders of RJD, AJSU and left parties will also address poll rallies in different parts of the state. The second phase of polling will be on 20th of this month, while counting will take place on the 23rd of November.
झारखंड में दूसरे चरण और महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी दलों के नेता मतदाताओं तक पहुंचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल झारखंड में देवघर जिले के सारठ और गोड्डा में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार विकसित झारखंड के निर्माण और राज्य को भारत का अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने घुसपैठ और इसके कारण संथाल इलाकों में कम होती जनजातीय आबादी का भी मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और फिलीपींस के बीच के संबंधों में लोकतांत्रिक मूल्य, बहुलवादी लोकाचार और आर्थिक समानताएं निहित हैं। भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, मानदंडों और नियमों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के संबंधों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस के प्रयासों से ऐसा संभव हो पाया है।
The 43rd Indian International Trade Fair will begin at Bharat Mandapam in New Delhi today. The theme of this year's fair is Viksit Bharat in 2047. The focus state this year is Jharkhand, while Bihar and Uttar Pradesh are the partner states. More from our correspondent.
This year, countries including China, Egypt, Iran, South Korea, Thailand, Turkey and UAE are participating in the much-awaited international fair. The fair will be open for business trade for the first 5 days starting today till the 18th of this month. Thereafter, it will be open to the general public till the 27th of November. During the business days, the tickets for adults will cost 500 rupees, whereas for children, the ticket is priced at 200 rupees on weekends, including gazetted holiday. For non-weekend, the tickets will cost 150 rupees. On the non-business days, the tickets for adults will be 150 rupees on the weekend, and for weekdays the prices will be 80 rupees. The tickets for children will cost 60 rupees during the weekend and 40 rupees on weekdays. Besides, entry will be free for senior citizens and specially abled during both business and non-business days. The fair will be open from 10 in the morning to 7:30 in the evening. Bhanu Pratap Singh, Akashvani, Delhi.
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग संस्थानों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर रोकथाम के लिए आज दिशा निर्देश जारी किए। इसके अंतर्गत सभी कोचिंग संस्थानों को अपने छात्रों और पाठ्यक्रमों के बारे में प्रासंगिक जानकारी देने को कहा गया है, जिससे उम्मीदवारों और उनके अभिभावकों को गुमराह होने से बचाया जा सके। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने विभिन्न कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए नई दिल्ली में ये दिशा निर्देश जारी किए। एक रिपोर्ट।
इन दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग संस्थानों को अपने कामकाज के बारे में किसी भी स्पष्टीकरण और अस्वीकरण को प्रमुखता से प्रकाशित करना होगा, जबकि नाबालिग छात्र छात्राओं की फोटो और प्रशस्ति पत्र इस्तेमाल करने की अनुमति उनके चयन के बाद ही उनसे लेनी होगी। संस्थानों को अपनी सेवाओं, सुविधाओं और बुनियादी ढांचों का भी सटीक ब्यौरा उम्मीदवारों या उनके माता पिताओं को देना पड़ेगा। दिशा निर्देश में कोचिंग, कोचिंग सेंटर और एंडोर्सर की स्पष्ट परिभाषाएं स्थापित की गई है। विज्ञापनों में झूठे और अप्रमाणित दावों, गारंटी और सफलता दर के प्रकाश के खिलाफ भी चेतावनी दी गई है। सीसीपीए ने अब तक 45 यूपीएससी कोचिंग संस्थानों को भ्रामक विज्ञापनों के लिए नोटिस जारी किया है और 56 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना जब्त किया। दिशा निर्देशों के बार बार उल्लंघन करने पर अत्यधिक जुर्माना या निलंबन की सजा दी जाएगी।
हमने करीब अब तक 45 ऐसे प्रोमिनेंट आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई की है, इन्हें नोटिस भेजा गया है। 18 के ऊपर हम लोगों ने पेनल्टी लगाई है और करीब 54 लाख रुपए की पेनल्टी हम लोगों को रिसीव भी हुई है। इसमें खास करके जो आईएएस कैंडिडेट्स हैं जो सफल होते हैं, वो वास्तव में पता चला कि इन्होंने एक घंटे का या 3-4 घंटे का एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में ही मात्र भाग लिया था। इसका अर्थ है कि प्रीलिम्स और मेंस उसमें इन इंस्टीट्यूशंस का कोई योगदान नहीं था।
उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए एक अग्र सक्रिय या प्रोएक्टिव तंत्र बनाने का भी निर्देश दिया गया है। सचिव खरे ने बताया कि पिछले साल सितंबर से इस साल अगस्त तक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए कोचिंग संस्थानों को दिए गए 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपभोक्ताओं को वापस दे दी गई है। उन्होंने आशा जताई कि यह दिशा निर्देश कोचिंग संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता और सत्यता लाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर जानकारी मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए आदर्श कुमार, नई दिल्ली।
श्रीलंका विल वोट टू इलेक्ट अ न्यू पार्लियामेंट टुडे इन अ क्रूशियल टेस्ट फॉर न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट अनुरा कुमार दिसनायके। ओवर 17 मिलियन वोटर्स विल डिसाइड द फेट ऑफ 8,800 कैंडिडेट्स वाइंग फॉर 225 पार्लियामेंट्री सीट्स। द इलेक्शन इज बीइंग सीन एज अ लिटमस टेस्ट फॉर मिस्टर दिसनायके'स पार्टी एज इट एम्स टू सिक्योर अ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट टू ड्राइव हिज रिफॉर्म एजेंडा। द रूलिंग पार्टी फेसेस चैलेंज फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग द समागी जन बलवेगिया led by Sajit Premadasa and the New Democratic Front aligned with former President Ranil Wickremesinghe. Economic concerns intensified by food and fuel price hikes and austerity tied to an IMF bailout loom over the election, underscoring the public's desire for change.
राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। ये सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का प्रतीक है।
In men's cricket, India defeated South Africa by 11 runs in the third T20 international to take a lead of 2-1 in the four-match series at Super Sports Park in Centurion last night. We have a report.
With Tilak Verma's powerful ton and Abhishek Sharma's quick fire 50, the Indian men's cricket team defeated South Africa last night in Centurion. With this victory, the young men in blue have made a significant lead over the hosts. Now the fourth and final match of the series will be played at the Wanderers Stadium in Johannesburg tomorrow, which will be the series decider. While in women's cricket, the BCCI has announced the schedule for India's upcoming home series against West Indies and Ireland. Women in blue will play a three-match T20I series at the D.Y. Patil Stadium in Navi Mumbai against West Indies from 15th of next month, followed by three ODIs in Baroda, Gujarat. They will then take on Ireland for a three-match ODI series at Rajkot in Gujarat in January. Both the series are part of the ICC Women's Championship. Moving on to badminton, India's two-time Olympic medalist PV Sindhu will be in action against Michelle Lee of Canada in the round of 16 of Japan Masters 2024 at Kumamoto. Both the shuttlers have faced each other 14 times, with Sindhu winning 10 encounters. Earlier, India's Lakshya Sen had to bow out after a hard-fought loss to Malaysia's Leong Jun Hao. In hockey, Women's Asian Championships Trophy 2024, India will take on Thailand in their third match at Rajgir this evening. In other matches, South Korea will lock horns with Malaysia, while Japan will take on China in afternoon. Next update is from tennis, where the Indian and Australian pair of Rohan Bopanna and Matthew Ebden lost their second match of the Bob Bryan group against El Salvador's Marcelo Arevalo and Croatia's Mate Pevic on the hard courts of the Pala Alpitour yesterday. The loss has put their hopes of reaching to the semi-finals in jeopardy. Bopanna and Ebden can now only make it to the top four if they convincingly win against the German pair of Kevin Kravitz and Tim Puetz tomorrow. Also, Simone Bolelli and Andrea Vavasori need to win both of their remaining matches. With the report of Chirag Jha, Aishwarya Rai Nigam, Akashvani News, Delhi.
न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में अब समय है महानगरों के प्रमुख समाचारों का। पहले बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से जुड़ी खबरों के साथ है नीना।
यस आकर्षिता, हियर्स न्यूज फ्रॉम चेन्नई फर्स्ट। रिसर्च स्टूडेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंसी कॉलेज हैव इन्वेंटेड अ न्यू टेक्नोलॉजी टू मेक ऑल सॉलिड स्टेट सोडियम आयन बैटरीज दैट कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड डिक्रीज द रिस्क ऑफ कैचिंग फायर। इट वॉज फाउंड दैट यूजिंग सोडियम परबोरेट एज अ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट ओवरकम्स द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन ऑफ डेंड्राइट फॉर्मेशन विच इज आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ फायर्स इन इलेक्ट्रिक vehicles. The technology has been patented. The principal investigator of the project, B. Muthukumaran, said that solid electrolytes are regarded as one of the most promising solutions owing to their strong durability, high energy and density, and remarkable cycling stability. Let's move over to Bengaluru. The Special Commissioner Vikas Kishore Suratkal of the Animal Welfare Department of Bruhat Bengaluru Mahanagar Palike has said that the program to feed street dogs with leftovers from nearby hotels will be introduced in all the 28 assembly constituencies of Bengaluru. Addressing a workshop yesterday in the city, he said that the program launched a few weeks on a pilot basis will now be expanded to all the assembly segments. He directed the officials to appoint a nodal officer in each division of the municipal corporation for the decent cremation of the dead dogs and serological monitoring and treatment of rabies in dogs. He called upon them to spread awareness about laws governing the welfare of animals and the judgments pronounced by different countries in the country in this regard. Moving on to Hyderabad, Secretary Ministry of Information and Broadcasting Sanjay Jaju has appealed to the professionals and experts of the gaming, animation and entertainment industry to take part in the World Audiovisual Entertainment Summit to be held from 5th to 9th February next year in Delhi. He said the prestigious event being organized by the Ministry of Information and Broadcasting is the first of its kind at global level. Speaking at the India Game Developers Conference, IGDC, in Hyderabad yesterday, the secretary said the high-profile event is the world's biggest convergence event for the entire media and entertainment industry.
और अब दिल्ली से समाचार। दिल्ली में कल देश की सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। इस सीजन में पहली बार AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया, जबकि केंद्रीय प्रदूषण निगरानीकर्ता ने इस गिरावट के लिए अभूतपूर्व घने कोहरे को जिम्मेदार ठहराया है और इसे एक संयोगिक घटना बताया। दिल्ली में खतरनाक स्थितियों में सुधार के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे चरण के कड़े प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। वहीं दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने कल कश्मीरी गेट के पास नवनिर्मित वासुदेव घाट पर पहला दिल्ली दीपोत्सव आयोजित किया। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण दृश्यता पर असर पड़ा, जिसके चलते राजधानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अनेक उड़ानों में देरी हुई। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने बताया कि हवा की गति में कमी के कारण दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली सरकार ने 2025-26 सत्र के लिए निजी स्कूलों में नर्सरी, KG और कक्षा 1 में प्रवेश प्रक्रिया की तारीखों की घोषणा की है। शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर जारी कर बताया है कि राजधानी के निजी स्कूलों में सत्र 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 नवंबर से शुरू होगी, जिसकी अंतिम तिथि 20 दिसंबर तय की गई है। और आइए अब जानते हैं मुंबई की खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने आज नगर निगमों के राजस्व पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि अधिकांश नगर निगमों की राजस्व व्यय को कवर करने के लिए स्वयं के राजस्व स्रोत अपर्याप्त हैं, जिससे उनकी कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित होती है। रिपोर्ट के अनुसार व्यापक सुधार जैसे GIS मैपिंग और डिजिटल भुगतान जैसी तकनीकों को अपनाना, आवधिक संशोधन के साथ दरों को युक्तिसंगत बनाना और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए निगरानी में सुधार करना नगर निगमों के राजस्व को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने वाले हैं। प्रशासन और मुंबई के विभिन्न व्यवसाय मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। मतदाता मतदान करने के बाद अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखाकर 20 से 22 नवंबर तक खरीदारी, भोजन और मनोरंजन पर 10-15% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। महाराष्ट्र रिटेलर्स एसोसिएशन, आहार एसोसिएशन और सिनेमा एसोसिएशन ग्राहकों के लिए छूट की घोषणा की है। आज विश्व मधुमेह दिवस है और उसके उपलक्ष में BMC का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग 14 नवंबर 2024 से मधुमेह और पोषण जागरूकता अभियान शुरू करेगा। रक्तचाप और मधुमेह जांच केंद्रों पर परामर्श के साथ साथ अभियान संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा और मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गैर संचारी बीमारियों के प्रसार को कम करने के लिए सकारात्मक जीवन शैली में बदलाव को प्रेरित करेगा। वहीं पश्चिमी रेलवे ने मुंबई डिवीजन के मुंबई सेंट्रल कोचिंग डिपो में 2 तरफा स्विच के साथ पिट लाइट कंट्रोल सिस्टम चालू किया है। और अब बारी कोलकाता की। कोलकाता में 6 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। कुछ इलाकों से हिंसा की खबरें भी आई हैं। अलीपुरद्वार जिले के मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र में ऐसी ही एक घटना में भाजपा उम्मीदवार की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और चुनाव आयोग ने इस घटना पर रिपोर्ट मांगी है। आज सवेरे आप सुन रहे हैं आकर्षता और नीना के साथ और अब समय है मौसम का हाल जानने का। तो सबसे पहले बात करें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की। दिल्ली की बात करें तो घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में सुबह के समय कोहरा और बाद में मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं जॉय सिटी कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
Dear listeners, it's time for weather news from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature is 24 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature is 20 degrees Celsius and maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius.
और श्रोताओं, आज विश्व मधुमेह दिवस भी है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में डायबिटीज को लेकर जागरूकता फैलाना है, जिससे लोग इस बीमारी के साथ भी स्वस्थ और सरल जीवन जी सकें और डायबिटीज से होने वाले नुकसान से बच सकें। देश में मधुमेह के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर प्रभु नारायण प्रसाद जी, मधुमेह से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
मेन डायबिटिक्स कॉज बाई वेट गेन, लेस फिजिकल एक्टिविटी, योगा एंड अदर थिंग्स है। एंड डायबिटिक्स मेन साइन एंड सिम्टम्स इन द पोली यूरिया, माउथ थ्रस्ट एंड एनी वन इज नॉट रिड्यूस। एंड सो डायबिटिक्स इज इम्प्रूव बाई द इट इज नॉट इज द वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज, इट इज अ लाइफ स्टाइल डिजीज एंड इट इज इम्प्रूव बाई एक्सरसाइज एंड प्रोपर डाइट। डायबिटिक ऑल्सो कॉज डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी एंड पेरिफेरी न्यूरोपैथी। सो डायबिटिक बाइट ऑफ द ऑल डिजीज। सो एवरी पर्सन एट प्रेजेंट सिनेरियो एंड एवरी 10% इज द सी बाय द 1% डायबिटिक। सो माई ओपिनियन डायबिटिक इज रिड्यूस बाई लाइफ स्टाइल and proper exercise, proper yoga and proper walking, proper diet.
UNESCO declared November 14th as World Philosophy Day to encourage critical thinking and reflection on philosophical issues. It promotes empathy and understanding among different cultures and people.
और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज के दिन ही 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को अलग रियासत बनाने की घोषणा की और आज के दिन ही 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी ने ब्रिटेन में रेडियो सेवा शुरू किया। ये ऐसा करने वाली पहली संस्था बनी।
In 1908, Albert Einstein first presented his revolutionary theory of relativity and quantum theory of light. The theory said that light operated at a constant speed despite space and time. In 1955, Employees State Insurance Corporation was inaugurated by the president. In 1996, Competition Postcard, a new category of postcard priced ₹2, introduced.
और आइए अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज संस्कृत भाषा के विद्वान मनीषी रचनाकार सत्यव्रत शास्त्री की पुण्यतिथि है। वे 3 महाकाव्यों के रचनाकार हैं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 1000 श्लोक हैं। वृहत्तम, भारतम, श्रीबोधिसत्व चरितम और वैदिक व्याकरण उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सत्यव्रत शास्त्री को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मभूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और आज ही प्रसिद्ध अभिनेत्री श्यामा की पुण्यतिथि है। वे 1950 और 1960 के दशक की हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत चेहरों में से एक थी, जिन्होंने हमें सजा, तराना, आर पार, भाभी, शारदा और बरसात जैसी फिल्में दी। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
Charlotte Coleman died on 14th November. She was an English actress born in Islington, London, England. She played the role of Jess in the television drama Oranges Are Not the Only Fruit. She is also known for childhood roles of Sue in Wurzel Gummidge. Coleman won a Royal Television Society Best Actress Award. She also read the novel for release by BBC Audiobooks. Coleman played Scarlett in the film 4 Weddings and a Funeral with Hugh Grant, Simon Callow and Kristen Scott Thomas. Here's a song from the movie 4 Weddings and a Funeral. Love is all around.
I feel it in my toes. Love is all around me. And so the feeling grows.
आज हिंदी सिनेमा की महान थिएटर अभिनेता, निर्देशक और चरित्र कलाकार मनोहर सिंह की पुण्यतिथि है। उन्हें किस्सा कुर्सी का, पार्टी, चांदनी, डैडी और रुदाली जैसी फिल्मों में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। रंगमंच में उनके योगदान के लिए उन्हें 1982 में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं फिल्म दीक्षा से उनका ये डायलॉग।
मैं अब आपके शब्द, आपकी भाषा नहीं बोलूंगा आचार्य। न पुत्रो न पुत्री न
ये श्लोक को नहीं बोलना। छोटा था तब से सुनता ये तुम्हारा श्लोक, नहीं मांगते तुम्हारा मंत्र।
आज हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री वीना की पुण्यतिथि है। उन्हें हलाकू, मेरा सलाम, नया जमाना, मुमताज महल, मेहंदी, चलती का नाम गाड़ी, कागज के फूल और छोटी बहने जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है। और आइए सुनते हैं उनकी फिल्म पाकीज़ा से उनका ये डायलॉग।
माफ कीजिएगा, इतराकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पांव देखे, बहुत हसीन है। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हम सफर।
नाउ वी कम टू द सेक्शन ऑफ बर्थ्स ऑफ फेमस पर्सनालिटीज। आकर्षिता
जी, तो आज ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे संसदीय सरकार की स्थापना और विदेशी मामलों में कूटनिरपेक्ष नीतियों के लिए विख्यात हुए। और आज ही असमिया साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर इंदिरा रायसम गोस्वामी की जयंती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित इंदिरा गोस्वामी ने असम के चरमपंथी संगठन उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और भारत सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की राजनीतिक पहल करने में अहम भूमिका निभाई थी।
Today is the birthday of Condoleezza Rice, who is an American political scientist and diplomat. Rice was born in Alabama, Birmingham. She served as the 66th United States Secretary of State, the second person to hold that office in the administration of President George W. Bush. Rice was the first female African-American Secretary of State, as well as the second African-American Secretary of State and the second female Secretary of State. Rice was President Bush's National Security Advisor during his first term. Prince of Wales is the heir apparent to the British throne as the eldest son of Elizabeth II, who celebrates his birthday today. He has been Duke of Cornwall and Duke of Rothesay since 1952, and he is the oldest and longest serving heir apparent in British history.
आज ही सिंधुताई सपकाल की जयंती है। अनाथ बच्चों के लिए कार्य करने वाली मराठी सामाजिक कार्यकर्ता थी वे, और उन्होंने अपने जीवन में अनेक समस्याओं के बावजूद अनाथ बच्चों को संभालने का कार्य किया। बेघर बच्चों की देखरेख करने वाली सिंधुताई के लिए कहा जाता है कि उनके 1500 बच्चे, 150 से ज्यादा बहुएं और 300 से ज्यादा दामाद हैं। सिंधुताई ने अपनी जिंदगी अनाथ बच्चों की सेवा में गुजार दी। उनका पेट भरने के लिए कभी ट्रेनों में भीख तक मांगी। पद्मश्री मिलने पर सिंधुताई ने कहा था कि ये पुरस्कार मेरे सहयोगियों और मेरे बच्चों का है।
ट्रेविस बार्कर सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे टुडे। He is an American musician, songwriter, and a record producer, best known as a drummer for the rock band Blink 182. Barker has also performed as a frequent collaborator with hip-hop artists, is a member of the rap rock group Transplants, founded the rock bands Plus 44 and Boxcar Racer. Due to his fame, Rolling Stone referred to him as punk's first superstar drummer, as well as one of the 100 greatest drummers of all time. Born in Fontana, California, Barker began drumming at an early age. He also starred in an MTV reality series named Meet the Barkers. Here is a song, In My Head, by Travis.
Straight from Texas, you used to be my lone star.
और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अपने श्रोताओं से विदा लें हम, तो आकर्षिता सिंह और नीना मैथ्यू को अनुमति दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। और आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day. Namaskar.